हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रूहान तेज कदमों से वार्ड की ओर बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई डरावना सपना सच हो रहा हो। जैसे ही वो उस इलाके में पहुंचा, उसकी नजरें सबसे पहले अनाही पर पड़ी। अनाही बेंच पर बैठी थी, आंखें आंसुओं से भरी थीं, हाथ कांप रहे थे। उसके बगल में वेदांत लेटा हुआ था, जो फिलहाल बेहोश था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें बेहद धीमी चल रही थीं। दो नर्सें उसके पास थीं, एक ऑक्सीजन मास्क लगा रही थी, दूसरी बीपी चेक कर रही थी। रूहान दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और अनाही के बगल में बैठते हुए बोला, मैडम जी। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। अनाही ने जैसे ही उसे देखा, उठकर उसके गले लग गई। रूहान, सब खत्म हो गया, विहा, बच्चा और अब वेदांत जी। उसकी आवाज़ रुक रुक कर निकल रही थी। रूहान ने उसे आहिस्ता से थाम लिया और फिर उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, शांत हो जाइए मैडम जी, पहले बताइए क्या हुआ, विहा कहाँ है और ये सब कैसे। अनाही ने हिचकियां लेते हुए पूरी बात बताई, विहा का दर्द, मिसकैरेज, बच्चे का ना रहना, वेदांत का गुस्सा खुद पर और फिर बेहोश होना। सुनते सुनते रूहान का चेहरा पत्थर सा हो गया। उसने आंखें बंद की, जैसे दर्द को अंदर ही रोकना चाहता हो। फिर धीरे से बोला, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी हमें मजबूत रहना है विहा के लिए। वो जब जागेगी तो उसे हम सबकी ज़रूरत होगी। रूहान का दिल तो चीख चीख कर रो रहा था अनाही को परेशान देखकर, लेकिन फिर भी वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था। अनाही ने उसके कंधे पर सर रखते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और वो भी लगातार उसकी पीठ सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद वेदांत को भी एक वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और अनाही और रूहान अब उसके आसपास बैठे थे, उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। रूहान ने अभी भी अनाही का हाथ कसकर पकड़ रखा था, ताकि वो खुद को अकेला ना समझे। शाम के करीब 4 बजे डॉक्टर विहा के वार्ड से बाहर आती है और फिर अपने चेहरे से मास्क उतारते हुए बोलती है, मिस्टर वेदांत, आपकी वाइफ को होश आने वाला है और हम चाहते हैं कि जब वो होश में आए तो आप में से कोई उनके पास हो, ताकि अगर वो पैनिक करें तो आप उनको संभाल पाओ। ऐसी कंडीशन में बहुत डर होता है कि मरीज़ की मानसिक हालत ख़राब हो जाती है और हम नहीं चाहते आपकी वाइफ के साथ ऐसा कुछ हो, तो प्लीज़ आप अंदर जा सकते हैं। वेदांत, जो खुद बेड पर किसी मरीज की तरह लेटा हुआ था, उसने जैसे ही सुना कि उसकी टोमेटो को होश आने वाला है और उसे उसकी ज़रूरत है, वो तुरंत ही उठकर अपने हाथ से ग्लूकोज ड्रिप निकालते हुए बोला, हाँ डॉक्टर, ऑफ कोर्स मैं जाऊँगा अपनी बीवी के पास। अनाही ने भी वेदांत के साथ उठते हुए कहा, क्या मैं भी जा सकती हूँ? तो डॉक्टर ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, एक बार के लिए मरीज के पास एक इंसान रह सकता है, प्लीज़ यहीं रहिए। वेदांत ने एक बार अनाही और रूहान की तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन अब उनमें एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे वो खुद को समझा रहा हो कि अब टूटने का वक्त नहीं है। मैं जाता हूँ, उसने धीरे से कहा, तुम दोनों बाहर इंतज़ार करो, अगर कुछ हुआ तो मैं बुला लूँगा। डॉक्टर ने वेदांत को वार्ड के अंदर ले जाया। दरवाज़ा खुलते ही ठंडी, दवा की महक वाली हवा ने उसे झकझोर दिया। अंदर रोशनी धीमी थी, मॉनिटर की बीप बीप की आवाज़ें चल रही थीं। विहा बेड पर लेटी थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और होंठ सूख चुके थे, फिलहाल उसकी आंखें बंद थीं। उसके हाथ में आईवी कैन्यूला लगा था और एक नर्स धीरे धीरे उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रख रही थी। वेदांत धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा शायद विहा को भी सुनाई दे रहा होगा। वो बेड के किनारे बैठ गया, उसका हाथ बहुत हल्के से थामा। टमेटो, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट में निकली। कुछ पल खामोशी रही, वो नर्स भी उठकर कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद ही विहा की पलकें हिलने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। पहले तो वो छत की तरफ देखती रही, जैसे समझ नहीं पा रही हो कहाँ है। फिर उसे जैसे ही अपने हाथ पर किसी की पकड़ महसूस हुई, उसने गर्दन घुमाकर देखा। उसकी नज़र जैसे ही वेदांत पर गई, उसकी आंखें भर आईं। उसने गुस्से में कहा, आपको पता है मुझे कितना दर्द हो रहा था? आप फिर से मेरे पास नहीं थे? आप क्यों अपना प्रॉमिस तोड़ देते हो बार बार? अगर मुझे कुछ हो जाता तो, और हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? इतना बोलकर विहा ने अपने पेट पर हाथ रखने की कोशिश करते हुए कहा, मैं बेबी से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे उसे। ये बोलते बोलते ही उसका हाथ उसके पेट पर पहुंच चुका था और उसे जैसे ही महसूस हुआ कि उसका पेट पहले की तरह हल्का फूला हुआ नहीं है, उसकी आंखें फैल गईं और उसने घबराते हुए जल्दी से उठने की कोशिश की, तो वेदांत ने उसे कंधों से पकड़ते हुए वापस बेड पर लिटाते हुए कहा, शांत हो जाओ टमेटो, तुम बिल्कुल ठीक हो और अब मैं तुम्हारे पास हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वेदांत की आंखों में तुरंत ही आंसू भर आए, जैसे उसे वेदांत की बातों पर यकीन ना हो रहा हो। उसने गुस्से से वेदांत के हाथ झटकते हुए कहा, मुझे देखने दीजिए ना, बेबी कहाँ गया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है और इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे अस्पताल में? इतना बोलकर विहा ने एक बार पूरे वार्ड को देखा। अब जाकर उसे एहसास हुआ था कि वो अपने घर के बेड पर नहीं, बल्कि एक अस्पताल के बेड पर है। उसके होंठ पूरी तरह कांपने लगे, जैसे वो कुछ बोलना चाहती हो पर उसकी आवाज ना निकल रही हो। वो बार बार उठने की कोशिश कर रही थी। वेदांत उसे यूं तड़पते देखकर खुद को अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। वो उसके करीब गया और फिर आहिस्ता से उसे बेड पर बिठाते हुए कसकर अपनी बाहों में भरकर बोला, शांत हो जाओ टमेटो, आई एम रियली सॉरी बेबी, हम अपने बच्चे को नहीं बचा पाए। विहा ने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, बकवास कर रहे हैं आप, थोड़ी मुझे देखने दीजिए, ऐसा कैसे हो सकता है, थोड़ी देर पहले तो मैं बिल्कुल ठीक थी ना, आपको पता है मैं उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी, ऐसे कैसे नहीं आएगा वो, आप छोड़ो तो सही मुझे। विहा बिल्कुल पागलों की तरह बर्ताव करने लगी थी, पर वेदांत की पकड़ हर पल के साथ उस पर मजबूत होती जा रही थी। वो उसे खुद से दूर नहीं होने दे रहा था और ना ही खुद की हालत देखने दे रहा था, जिससे विहा की बेसब्री और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब वेदांत की आंखों से भी आंसू निकलकर विहा की गर्दन पर गिर रहे थे। उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए वो धीरे धीरे सिसक रहा था, क्योंकि बच्चा अकेला विहा ने नहीं खोया था, उसका उतना ही दर्द वेदांत को भी था। बस फर्क ये था कि वो अपना दर्द विहा की तरह बाहर नहीं निकाल सकता था। विहा की सिसकियां अब चीख में बदल रही थीं। वो वेदांत की बाहों में बार बार तड़प कर छटपटा रही थी, जैसे कोई तूफान उसके अंदर उठ रहा हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, देखने दो मेरा बच्चा, मेरा बेबी, वो कहाँ है, वो तो मेरे पेट में था ना, वो तो हिल रहा था, मैंने महसूस किया था, मैंने उसे बात की थी, वो ऐसे नहीं जा सकता वेदांत, प्लीज छोड़ो मुझे। उसकी आवाज हर शब्द के साथ टूटती जा रही थी, हाथ पैर पटक रही थी, लेकिन वेदांत ने उसे और कसकर जकड़ लिया था। उसकी अपनी सांसें भी रुक रुक कर आ रही थी। उसने विहा के कान के पास मुंह ले जाते हुए लगभग फुसफुसा कर कहा था, टमेटो सुनो बच्चा, प्लीज सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, डॉक्टर ने सब कुछ ट्राई किया लेकिन वो बच नहीं पाया, मैं वहां नहीं था, मैंने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो प्लीज। इतना बोलकर वेदांत ने कसकर अपनी आंखें भींच ली और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। तो वहीं ये सुनकर विहा अचानक शांत हो गई, जैसे सारी ताकत एक पल में खत्म हो गई हो और उसमें बिल्कुल जान ना बची हो। उसका शरीर ढीला पड़ गया और अगले ही पल वो वेदांत की बाहों में निढाल हो गई।
और ये महसूस करते ही वेदांत की धड़कनें मानो पल भर के लिए रुक गईं। उसने झट से विहा के सर के नीचे एक हाथ रखा और उसे अपनी बाहों से अलग किया।